તારીખ 17-10-1994 શ્રી સમયસર ગાથા 299 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 3
અભિપ્રાય દાર્શનિક અભિપ્રાયો અવશેષા જે ભાવા છે ऐसा प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने का कार्य तो प्रज्ञा से ही होता है। चैतन्य विशेष कहेंगे तो उसका दो भेद है, ज्ञान और दर्शन। चेतना विशेष है और चैतन्य सामान्य में दर्शन ज्ञान का भेद नहीं गिनने में आता है, उसी को चेतना सामान्य कहते हैं। दर्शन उद्योग जो सीधा पकड़ सकता है तो ज्ञानोपयोग को पकड़ता है, वो भी तीसरे स्टेज में। मति ज्ञान का चार स्टेज है, अवग्रह या हवाय अवतार। तो अवग्रह या तक तो उसको पता नहीं चलता, हवाय से पता चलता है और बनाने का पता चलता है। तो जो विज्ञानोपयोग में मत ज्ञान पहले होता है, फिर शुद्ध ज्ञान होता है, वो कब होता है? पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर मत ज्ञान उपयोग होता है, फिर शुद्ध ज्ञान उपयोग होता है। तो दर्शन उपयोग का पता नहीं चलता, मत ज्ञान का पता चलता है तो हवाई के स्टेज में पता चलता है, अवग्रह ज्ञान के स्टेज में नहीं पता चलता। इतना स्थूल उपयोग है, का उपयोग उतना फूल है। तो दर्शन को तो सीधा नहीं पकड़ सकता, होता है तो युक्ति से जानते हैं, आगम से जानते हैं, अनुमान से जानते हैं, पकड़ पाते भी है, नहीं पकड़ते। वस्तुस्थिति तो है ही, वस्तुस्थिति तो है ही। अब क्या है कि यहाँ प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करना क्यों लिया, तो ज्ञान हमारे परिणाम में नहीं आया। समय सारा ही रत्न शास्त्र पढ़ने पर जैसे शास्त्र आ गया है वैसा विचार विकल्प में हम धारणा करते हैं, क्या ऐसे विचार विकल्प भी हम धारणा करते हैं? विकल्प से हम वाणी से ऐसे कहते हैं नहीं आता है तो उससे कोई नुकसान होता है तो क्या प्रश्न में वो बात जरूर आई है कि नुकसान होता है, लाभ नहीं होता है, उनका प्रश्न का नुकसान होता है तो क्या होता है, और ऐसे नुकसान से कैसे बचाना है, बच सकता है, क्योंकि हमें जो कुछ करना है तो फायदा के कारण से करना है, नुकसान के कारण से नहीं करना। तो शास्त्र पढ़ने पर भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि शास्त्र पढ़े इसमें नुकसान नहीं होंगे, लाभ नहीं होंगे, ऐसा एकांत नहीं है। यथार्थ रूप से शास्त्र पढ़ा जाता है तो लाभ होता है, पर यथार्थ रूप से पढ़ा जाता है तो नुकसान भी होता है, हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, तो गौभाग जीव निश्चयाभाषी हो जाता है, शुष्क हो जाता है, पुष्प ज्ञानी हो जाता है, और मत प्रहलाप दशा उसको कहते हैं। मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरे में कुछ विवाद नहीं है, शरीर कहने में नहीं है विवाद, मेरे सब क्रिया में नहीं है। तो ऐसे मत प्रहलाप दशा हो जाती है, या अति परिणामीपणा उसको कहते हैं, परिणाम तो नहीं हुआ लेकिन मान लिया कि मैं ऐसा परिणाम कर देता हूँ, ज्ञान मार्ग दुराराध्य है। क्या जो ज्ञान मार्ग है, शास्त्र ज्ञान से आत्म कल्याण करना तो उतना आसान नहीं है, ऐसा करके बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ मिला है।
विशिष्ट
तो सामान्य बुद्धि वाले सोचते हैं उसको क्या होगा, संदेह हो जाएगा, शंका पड़ेगी कि यही गाथा का ऐसा उल्टा पुलटा अर्थ एक ही गाथा के में अलग अलग निकालते हैं, बात क्या है, वहां कहा है लोगों ने बोले बीस को निकाला एक गाथा, बीस अर्थ निकाला एक गाथा का, तो लोगों अर्थ हो लिया है तो जो उपयोग बाहर जाता है वो जीव का उपयोग ही नहीं है। क्यों? तो ज्ञानी ऐसा जो देखता है कि मेरे उपयोग को कोई हरण नहीं कर सकता, मेरा उपयोग नहीं रहेगा, बाहर जाता है मेरा उपयोग नहीं जाता है, मालूम है तुम मेरा नहीं है, जैसे आप मेरा नहीं है वैसे बाहर जाने वाला उपयोग भी मेरा नहीं है। तो एक तो संदेह हो जाएगा, दूसरा विकल्प बहुत बढ़ेगा, किसने से ऐसी बात है, किसने से ऐसी बात है, कुछ नहीं कहता हूँ मैं, वो बात है उसके कहता हूँ मैं, वो बात है यहाँ वो है वहाँ वो है, मुख्यमंत्री ऐसा कहता है, दूसरे ज्ञानी बिना से ऐसा कहते हैं, कई अनेक प्रकार की बातें हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत विमिक्षाएं हैं, अनंत अनंत भाव भेद से भरी हुई अनंत अनंत नई निक्षेप से व्याख्या नहीं है जिनवाणी को, ऐसी जिनवाणी तो है उसमें अनंत अनंत नई की जो बिछड़ी है, तो विशेष प्रज्ञान ज्ञानियों का काम है, तो उसको विकल्प पढ़ने का भी बहुत काम है। जबकि हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं कि निर्विकल्प स्वरूप में निर्विकल्प होने के लिए शास्त्र साधन है, शास्त्र निर्विकल्प होने के लिए साधन है, वही शास्त्र विकल्प बढ़ाने का साधन क्या निमित हो गया तो बात तो उल्टी होगी, तो विकल्प का कारण बन जाता है, स्वच्छता आ जाती है, मैं जानता हूँ मैं समझता हूँ इसके ज्यादा में क्या क्या अपेक्षाएं चली है, मुझे बराबर ख्याल में है, मैं भी जानता हूँ और मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, मैंने धारणा ज्ञान तो हुआ है लेकिन परिणाम नहीं हुआ है, लगता है ये भी ज्ञान है मैं भी ज्ञान नहीं हुआ हूँ, तो ये परिणाम नहीं होने के बावजूद भी परिणाम बड़ा मान लिया, तो अति परिणाम का इत्यादि कारण वारंवार जीव के लिए उस मार्ग से पतन के हेतु होते हैं, कि पतन के हेतु होते हैं, नुकसान होता है, अथवा उच्च भूमिका प्राप्त होने देने के लिए तो शास्त्र पढ़ता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, शास्त्र ही पढ़ता रहेगा, ये भी बात करेंगे।
जो विपरीत हैं उन्हें जानना जरूरी तो है, जो विपरीत गाय है उनको जानना जरूरी तो है, उनको जाने बिना छोड़े गए, उनको जाने बिना उनसे बचे गए, उनसे बचना है, यदि जाने भी तो उनको जाने भी तो
विपरीतता को जानना भी चाहिए और जानकर छोड़ना भी चाहिए, लेकिन जानने और छोड़ने की प्रक्रिया करते वक्त कहीं हम नई विपरीतता नई विपरीतता को ग्रहण नहीं कर लेते हैं, उसका ख्याल हमें रखना, इसकी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। इसलिए ज्ञानियों ने ये कहा कि ऐसे जो महान परमाणु हैं तो ज्ञानी के चरण में बैठ करके समझना अच्छा, अपने आप समझने को जाएगा तो विपरीतता छोड़ने एक छोड़ने को जाएगा तो दो दूसरी घुस जाएगी, अपने को खुद को बना नहीं जाएगा, कल्पना हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगा, विकल्प बन जाएगा, संदेह हो जाएगा, बना नहीं जाएगा। और हमारे बहुत से मनुष्यों को पूछते हुए हम देखते हैं कि ये संसार में ऐसी बात है और संसार में ऐसी बात है, ऐसा क्यों? और संसार कहता है कि शुभ अशुभ भाव से तुम भिन्न हो, जबकि प्रवचन सार ये कहता है आठवीं नौवीं गाथा में कि शुभ और अशुभ के काल उपयोग में आत्मा ही ऐसा बन जाता है उनके आत्मा बने, वहां आत्मा को ना देता है आत्मा नहीं बनता, यहाँ कहते हैं आत्मा में बनता है। क्या विवेक्षा है इसमें? समय सार दृष्टि प्रधानता से लिखा हुआ है, वही आचार्य, वही आचार्य ने, दोनों आचार्य एक है, क्या करने वाला और कुछ करता आचार्य, दोनों कुल आचार्य अमृत चंद्र आचार्य। ज्ञान प्रधानता से बात चल रही है, प्रमाण की प्रधानता से बात चलती है, प्रधानता से बात करती है, अगर वो बात को ठीक नहीं समझे तो संदेह बिना रहेगा। तो संदेह इसका मतलब क्या है? तो बड़ा अपराध है।
ज्ञान प्रधानता से प्रमाण से जिस बात को रतन साहब ने सिद्ध की है तो उसको स्पष्ट कर दीजिए, जिसमें भूल ना हो। तो वो क्यों की है?
जैसे कि किसी भी जीव का शुभ उपयोग होता है या अशुभ उपयोग होता है, पुण्य के भी परिणाम होते हैं, पाप के भी परिणाम होता है, तो जीव खुद ही परिणाम करता है। जैसे एक वृक्ष है, इसका मूल भी वृक्ष है, उसका फल भी वृक्ष है, उसकी जो शाखाएं है वो भी वृक्ष है, इसके भी पत्ते भी वृक्ष है और फूल भी फल भी सब वृक्ष, वृक्ष को सब में व्यापा हुआ है, ये सब एक वृक्ष के अंग है। फली नाक है वो कान नहीं है, लेकिन नाक भी शरीर रूप है, कान भी शरीर रूप है, शरीर के अवयव होने से शरीर का व्यापक पूरा नाक में भी है, कान में भी है, लेकिन नाक है वो कान नहीं है, कान है वो नाक नहीं है, मूल है वो शाखा नहीं है, शाखा है वो मूल नहीं है, लेकिन वृक्ष तो दोनों में है। ठीक उसी प्रकार जीव पे जितने भी पर्याय हो, चाहे शुद्ध हो चाहे शुभाशुद्ध हो, अशुद्ध हो, खुद जीव ही परिणमन करता है, स्वयं का परिणमन है, दूसरे का नहीं है। इसलिए अपराध है तो हमारा है, पर अपराध हम स्वयं करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसलिए हमारा अपराध का मिटाना भी हमारे अपराध है।
अनादि का इतिहास होता है आचार्य को, अनादि काल का हमारा इतिहास
इतिहास बता दिया, बता दिया। तो दोनों बात को है अपने अपने स्थान पे सही है। अगर संदेह हमें उपजता है तो क्या होता है? कि संदेह उपजने से हमें आचार्य की प्रमाणिकता में शंका होती
है। संदेह होता है, संदेह होता है, संदेह नहीं होता
है,
संदेह नहीं होना,
संदेह नहीं होना, आशंका होना अलग बात है, शंका होना अलग बात है। आशंका जिज्ञासा में जाती है, शंका है तो प्रमाणिकता को डाउट करती है, सही कहा होगा या गलती तो नहीं हुई है। तो ऐसा गुरु का, श्री गुरु का और श्री गुरु के वचन रूप शास्त्र का निर्णय होता है। संदेह उपजने से क्या होता है? पढ़ते हैं शास्त्र और करते हैं अविनय, और अविनय करने से क्या क्या नुकसान होता है? दर्शन को तीव्र हो जाता है, विचार को तीव्र हो जाता है। देव गुरु शास्त्र ज्ञानी सत्व इसका अविनय होते ही दर्शन गुरु के परिणाम के परिणाम तीव्र हो जाता है, डर जाता है, कार शास्त्र करने वाले जिम्मेवारी बहुत है, बहुत जिम्मेवारी का काम है, पढ़ने से कहीं किसी भी प्रकार के गड़बड़ हो गए तो खत्म हो जाएगा।
अपने लक्ष्य के स्वाध्याय करें, अपने लक्ष्य से स्वाध्याय करें, यही कुछ हो पाए शंका है कि अपने किसी जन के स्वाध्याय शंका हो जाए तो आत्मकल्याण करेगा
तो संदेह नहीं होगा, जिज्ञासा करने वाला मनुष्य को ये अपना संस्था में स्थापित कर दिया है कि जो भी आचार्य है ज्ञानी है हमारे से बहुत आगे है, अगर हमारी समझ में नहीं आते तो ये हमारा दोष है, कहने वाले पर हमें शंका करनी
अपने कल्याण समझने के लिए साथ न पड़े
बहुत बहुत है। पूरी नहीं है किंतु चालू रहेगी और भावना भी चालू रहेगी कि अगर मुझे कोई निंदा भी करता है कि तीर्थाटन करने का क्या कारण है। पांच नंबर के पत्र में लिखा है चित्त प्रवास का उसरंगी दस दस कारण दस योग्यता के दस पहलू लिए इसमें तीर्थ प्रवास का एक बात ऐसा क्यों तो परमात्मा एक तीर्थ यात्रा करते हैं परमात्माओं को भी तीर्थ यात्रा करने का भाव तो जो मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है उसको कभी ऐसे तीर्थ स्थानों में परमात्मा का योग बनने की संभावना है मिल सकते हैं उनका मिलने का ठिकाना कहाँ ज्ञानी का कोई एड्रेस होता है क्या हाँ कि तुम ये एड्रेस ज्ञानी का ऐसा तो होता नहीं तो कहाँ मिलते हैं ब्रह्मायतनों में वो मिलते हैं मंदिर में मिलते हैं हमेशा मंदिर क्यों आना मंदिर आने में दो अभिप्राय एक तो जिनेन्द्र परमात्मा का दर्शन भी होता है और वहाँ स्वाध्याय भी होता है हमारे दिगंबर संप्रदाय में तो एक प्रणाली का है शास्त्र स्वाध्याय की नित्य दर्शन भी करना शास्त्र स्वाध्याय भी करना तो शास्त्र स्वाध्याय जो आते हैं तो वहाँ दर्शन करने के लिए जो ज्ञान धर्मात्मा आते हैं शास्त्र स्वाध्याय के लिए आते हैं तो धर्मायत धर्म के आयतन होते हैं वहाँ ज्ञानी का धर्मात्मा का योग होने का प्रत्यक्ष जो वाणी में वक्तृत्व कला होती है बहुभाग जी उसमें आकर्षित होते हैं, उसमें फंसते हैं। क्यों? तो ये भी एक कला होती है, ऑरेटरी जिसको कहते हैं, तो अच्छी बोलने की जिसकी छटा हो उसमें बहुभाग सामान्य रूप से उपयोग करता है। क्यों? कि उनको ज्ञानी की वाणी और अज्ञानी की वाणी में कैसा अंतर होता है वो समझने की योग्यता या क्षमता नहीं है। ये कठिन है, यह बात यथार्थ है। क्यों यथार्थ है? क्योंकि शुष्क ज्ञानी भी कुछ सीख करके सीख लेता है, शास्त्र पढ़ करके या ज्ञानी के प्रवचन सुन करके कैसे बोलना तो सीख करके ज्ञानी जैसा उल्लेख करे जिससे उसमें वचन की समानता दिखने से शुष्क ज्ञानी को भी सामान्य मनुष्य ज्ञानी माने, क्योंकि अज्ञानी भी शुष्क ज्ञानी भी ऐसा ही बात करेगा जो जैसा ज्ञानी बात करता है वैसा शुष्क ज्ञानी करेगा। तो ऐसा उद्देश्य सीख करके वचन की समानता दिखने से सामान्य मनुष्य को भ्रांति होती है और मान सकता है। सामान्य मनुष्य ज्ञानी माने, मंद दशावान मनुष्य जीव भी ऐसे वचनों से भ्रांति में पड़ जाए। मंद दशावान मनुष्य मैंने प्राथमिक कक्षा में आए होते मनुष्य ऐसे भ्रांति में पड़ जाए, परंतु उत्कृष्ट दशावान मनुष्य पुरुष शुष्क ज्ञानी की वाणी शब्द से ज्ञानी की वाणी जैसी देख कर सर्वगुणों का अच्छा है उनकी सत्ता ज्यादा अच्छी है प्राय भ्रांति पाने योग्य नहीं है। उत्कृष्ट दशावान मनुष्य को भ्रांति नहीं होती है, मंद दशावान मनुष्य को भ्रांति हो जाती है। क्योंकि क्योंकि आशय से शुष्क ज्ञानी की वाणी से ज्ञानी की वाणी की तुलना नहीं होती, आशय भेद है। क्या दोनों का आशय में भेद है? आशय में ज्ञानी की वाणी जो है तो कितना भी प्रकार से बात आएगी लेकिन उसका टोटल एक जगह आएगा, देखो आत्मकल्याण इससे होता है। प्रमाण से द्रव्य देखे जब द्रव्य की बात करें तो आत्मकल्याण कैसे होता है यही बताएंगे, पर्यायार्थी निर्णय से बात करेंगे तो आत्मकल्याण कैसा है नहीं बताएंगे, द्रव्यार्थी निर्णय से बात करेंगे तो भी आत्मकल्याण कैसे है नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये द्रव्यार्थी निर्णय है वही उपकारी है, प्रमाण ज्ञान है तो उपकारी है नुकसानकारी है, ऐसा नहीं। पर्यायार्थी निर्णय नुकसान करता है ऐसा नहीं, एक में फायदा करता है दूसरा में नुकसान करता है वो नहीं बताएंगे। किसी भी नए से बात करो तो आत्मकल्याण के प्रति ले जाने वाले नए हैं, किसी का नाम नए है कि नए को भी ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? आत्मा में आत्मकल्याण के लिए ले जाते हैं। ऐसी जिसकी प्रगति है वो ज्ञानी है, तो किसी भी नहीं के वचन को कोऑर्डिनेट कर सकता है कि आत्मकल्याण का इसमें इसके इसको कैसे इसका ऑर्डर दिखाया जाए, अनुक्रम दिखाया जाए कहीं से भी हो। तो किसी भी योग्यता की बात आएगी मनुष्य को उसको कैसे आत्मकल्याण में ले जाना तो ज्ञानी जानता है, खुद वो मनुष्य नहीं जानता है उसका वो ज्ञानी जानता है।
राग और ज्ञान भिन्न है, ज्ञानी की वाणी इतनी ही राग और ज्ञान भिन्न है, कितनी प्रमाणिकता से अंतर में है, उनके भाव में थी, कहने वाले के भाव में ही बात थी, शब्द नहीं। तभी बात
राग और ज्ञान भिन्न है वो अज्ञानी भी कहे जाता है, लेकिन दोनों के परिणाम में अंतर होने से, दोनों के अंदर टोन में भी अंतर है, बाह्य टोन में अंतर नहीं है, लेकिन अंदर टोन में अंतर है। चांदी का रुपया का आवाज दूसरा होता है और कलाई का रुपया का आवाज अलग होता है।
आगे पीछे आवाज आवाज
रहेगी नहीं, क्योंकि इसका जोर राग पर है, उज्जवल पर है, पर ग्रह पर है, ज्ञानी का जोर आत्मा पर है, वितरागता पर है, आत्मकल्याण पर है।
ये तो पिछाड़ने वाले की कला चाहिए, ये तो पिछाड़ने वाले को ऐसी कला चाहिए।
हाँ, पिछाड़ने वाले की कला चाहिए, पिछाड़ने वाले की जिम्मेवारी है, वरना ज्ञानी को ज्ञानी मानेगा, अज्ञानी को ज्ञानी मानेगा, एक गड़बड़ हो जाएगी। तीव्र भावना से बुद्धि भी तिक्की हो जाएगी इस विषय में, तो वो जान सकेगा कि ज्ञानी की वाणी फिर वह पूर्वांतर विरोधी है, ज्ञानी की वाणी में पूर्वांतर पर विरोध आए बिना रहेगा नहीं, वो अपनी बात को आगे जा करके काटेगा, उनके ज्ञानी को ऐसा नहीं होता। आत्मार्थ उपदेशक होती है और पूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली होती है, और अनुभव सहित होने से आत्मा को सतत जागृत करने वाली होती है। आत्म जागृति में होकर के बोलते हैं तो दूसरों में भी उसको आत्मा की जागृति होने के निमित्त नैमित्तिक प्रक्रिया बन जाती है, तो अज्ञानी से कभी नहीं मिलती है। इसलिए ज्ञानी से दूसरे का कल्याण होता है, अज्ञानी से किसी का दूसरे का कल्याण नहीं होता। शुष्य ज्ञानी की वाणी में तथा रूप गुण नहीं होते। सबसे उत्कृष्ट गुण तो वो है पूर्वार्पर और विरोधिता, वो शुष्क ज्ञानी की वाणी में नहीं हो सकता, वो काटेगा ही काटेगा अपनी बात पर, भले ही कहेगा कि राग भिन्न है, लेकिन अमुक प्रकार के राग तो उपाधि है, उपाधाए बिना रहेगी। क्यों पूर्वार्पर विरोध क्यों आता है, उसे यथास्थित पदार्थ दर्शन नहीं होता। पदार्थ में क्या है, परस्पर विरोधी गुण है, संस्कार में से आत्मा ऐसा है, असंस्कार में से आत्मा ऐसा है, पुरुषार्थ में से ऐसा है, काल में से ऐसा है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, शुद्ध में से शुद्ध है, अशुद्ध में से अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, तो उसको पदार्थ का दर्शन है, दोनों बात ध्यान में एक साथ है, तो अविरोध रूप से वो कह सकते हैं। दूसरा विरुद्ध धर्म कहने को जाएगा तो अगली बात को काट देते, बात को काट करके बोलेगा, उसको पता नहीं होगा, सुनने वाला उत्कृष्ट मनुष्य होगा तो पता चल जाएगा, सामान्य मनुष्य होगा तो पता नहीं चलेगा। और इस कारण से जगह जगह उसकी वाणी कल्पना से युक्त होती है, क्योंकि कहीं बातें जो होती है वो तो वाणी में नहीं आती, प्रयोग में आती है, तो जो प्रयोग में नहीं आया ऐसा शिष्य ज्ञानी है, तो अनुमान लगाएगा, कल्पना करेगा, उधर से इधर होगा, ऐसा उधर जाएगा तो ऐसा होगा, ये कल्पना का वाला मार्ग नहीं है, ठोस वास्तविकता का मार्ग है, कल्पना युक्त मार्ग इसमें नहीं चलता, कल्पना स्वयं विपर्यास है और विपर्यास स्वयं दुखदायक है।
इसमें निमित्त की मुख्यता मानेगी क्या, इसमें निमित्त की मुख्यता माने क्या?
नहीं, उपादान की मुख्यता की बात सुनते हैं, योग्यता अपने उत्कृष्ट होने चाहिए पहचानने के लिए। इत्यादि नाना प्रकार के भेद से ज्ञानी और ज्ञानी की वाणी की पहचान उत्कृष्ट मुमुक्षु को होने योग्य है। ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी को तो हो गई, उत्कृष्ट मुमुक्षु हो गए तो ज्ञानी को तो हो गई। ज्ञानी पुरुष को तो उसकी पहचान स्वयं स्वभाव से होती है, क्योंकि स्वयं मान सहित है और मान सहित पुरुष के बिना इस प्रकार के आशय का उपदेश नहीं दिया जा सकता, ऐसा सहज ज्ञानी जानते हैं। इसलिए उनको तो उनकी नजर बात तो ज्ञानी जाएगा तो कहता नहीं।
उपदेश देने में क्या बाधा है? उपदेश देने में क्या बाधा है? उपदेश तो दे, उपदेश देने में क्या बाधा है? उपदेश तो देने की, उपदेश देने की जो ना करे
ना, उपदेश उपदेश क्या है कि उसके कल्पना युक्त उपदेश नहीं दिया जा सकता, आशय का ऐसा उपदेश नहीं दिया जा सकता। भान रहित पुरुष है ऐसा आशय का उपदेश नहीं दे सकता। ज्ञानी जैसा उपदेश दे सकता है वैसा उपदेश अज्ञानी नहीं दे सकता, ये कहने का अभिप्राय है। मनुष्य में तो सवाल ही नहीं है उपदेशक बनना, जब ज्ञानी अपने को उपदेशक नहीं मानता तो मनुष्य उपदेशक बन जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। क्यों? कि उसकी इंजन वाली गाड़ी बिना ब्रेक की हो जाएगी। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है उसका क्या होता है? तो चालू होने के बाद बंद रहेगी नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। जबकि ज्ञानी के पास तो सम्यक ज्ञान का कंट्रोलिंग वाल है, उसके पास तो सम्यक ज्ञान रूपी कंट्रोलिंग वाल है, कंट्रोल करता है, बैलेंस रहता है उसको, वाणी में भी परिणमन में भी। परिणमन में बैलेंस रहे तो वाणी में आई गई आएगा, जब परिणमन में नहीं है तो वाणी में आने का स्वाद नहीं होता। और एक सुंदर बात वो भी थी, जिसे अज्ञान और ज्ञान का भेद समझ में आया है, जिस मुमुक्षु को ज्ञान किसो किसको कहे अज्ञान किसको कहे ऐसा अंतर समझ में आया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानी का भेद समझ में सहज समझ में आ सकता है। अब ज्ञान क्या और अज्ञान क्या, निज में निज बुद्धि होवे वही ज्ञान है और पर में निज बुद्धि होवे वही अज्ञान है, ऐसा परिणमन को जो समझ सकता है उसको ज्ञानी और अज्ञानी का भेद समझ में आता है। तो सब स्वप्न करता है क्या नहीं कहीं करेगा नहीं, भाषा कुछ में वो परिणमन में आएगा पर तो पर ही जानता है वो स्वतंत्र प्रकार का ज्ञान है, सबने ज्ञान है।
ऐसा कोई मुमुक्षु नजर में नहीं आता क्या कि जो पर को पर जाने?
क्या
ऐसा कोई मुमुक्षु नजर में नहीं आता क्या जो पर को पर जाने?
हाँ, हो सकता है अपने तो नजर में तो क्या लेना, तो बात तो व्यक्तिगत हो जाती है, तो फिर चर्चा में तो व्यक्तिगत बात है, लेकिन हो सकता है ऐसे मुमुक्षु भी हो सकता है कि जो सर को कर जाने सर को सुन जाने उत्कृष्ट में जो आते हैं ऐसे भी होते हैं, हो सकते हैं। उसको ऐसी खोज होती है, ऐसी खोज होती है ज्ञानी को पाने के लिए मुझे सातवें पाताल में जाना पड़ेगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे ज्ञान ही चाहिए। जैसे कैसे भी चाहिए, ऐसे एक तीव्र उत्तर होती है आत्मकल्याण का यथार्थ लक्ष्य होता है तो ऐसे एक तीव्र उत्तर होती है, पर ऐसी खुद होती है तो ज्ञानी उसके नजरअंदाज करना क्या है कि उतरी उतरी भावना से तो सब ऐसा ही कहेंगे कि हम मंदिर आते हैं तो आत्मकल्याण के लिए, और शास्त्र पढ़ते हैं तो कहने की जरूरत नहीं कि हम आत्मकल्याण के लिए पढ़ते हैं, हम तो आत्मकल्याण के लिए पढ़ते हैं, उसे पूछने की शंका करने की क्या जरूरत है। लेकिन वास्तव में इसका लक्षण क्या, आत्मकल्याण के हिसाब से ही हमारी प्रवृत्ति हो रही है, इसका कोई स्वरूप है क्या? तो उसका स्वरूप है, तो उसका मूल्यांकन इतना बड़ा है आत्मकल्याण के लिए तो सब कुछ न्योछावर कर सकता है, वो कंडीशन नहीं रखता, सब कुछ न्योछावर कर सकता है, तभी उसको माने के आत्मकल्याण उसको करना है, वरना कंडीशन रखेगा ही रखेगा। आज तो वो है हम नहीं जा पाएंगे, आज तो वो ऐसी बात है हम नहीं जा पाएंगे, वो बात हो जाएगी, छोटी मोटी बात मुक्त हो जाएगी, पर हमारा आत्मकल्याण का उपाय कौन हो जाएगा इसका में? तो आत्मकल्याण तो हमें करना है, लेकिन हमारी अनुकूलता बनी रहे तो ये जो गड़बड़ है कि आत्मकल्याण को लास्ट प्रायोरिटी में रखा है, इसने में सेकंड प्रायोरिटी में नहीं रखा है, थर्ड प्रायोरिटी में नहीं, फोर्थ प्रायोरिटी में नहीं, लास्ट प्रायोरिटी में आत्मकल्याण को लगे थे। करना चाहिए औरों के विकल्प बढ़े नहीं बढ़े उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम आत्मकल्याण करना चाहें उसमें औरों का विकल्प क्यों पहले तो बढ़ना चाहिए, क्या ये आत्मकल्याण करना कोई अनुचित बात है क्या? कोई अनुचित कार्य करे तो औरों का विकल्प बढ़ना ठीक है यादि है, फिर आत्मकल्याण हम करें उसमें औरों का वितरण बढ़ता है ऐसा क्या? तो कोई व्याजित बात है क्या? तो व्याजित भी है, वो गैर व्याजित है उसको व्याजित करे, ठीक है। अयोग्यता के वश कुछ होता है वो एडजस्टमेंट करने से शांति बढ़ती है, शांति रहती हो तो करें, लेकिन एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी नहीं होती है तो क्या करोगे? उसको तो कई बातें निकेल से देखनी पड़ती वास्तव में मनुष्य का मैं जोर तो इतना ही आना चाहिए कि मेरे आत्मकल्याण की टॉप प्रायोरिटी है, उसके आगे हमें कहीं गड़बड़ करनी नहीं है, टॉप को टॉप में ही रखना है, उसमें कोई फेरफार नहीं करना, इतना जोर आना चाहिए, और वो जोर रहते हुए कुछ हो जाए बात अलग है, तो जोर को तोड़ते हुए अगर कुछ होता है तो एडजस्टमेंट भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है, ये सब गड़बड़ है। तो मनुष्यता का स्वरूप भी बहुत बहुत प्रकार से विचार करने होते हैं। ऐसे यहाँ पर 299 का भावासन होया से कि प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय में हो। जानने वाले को भी प्रज्ञा से ग्रहण करना, देखने वाले को भी, मेरे पूरा दृष्टि को प्रज्ञा से ग्रहण करने की बात है। तो फिर गुण जानने का हो या देखने का हो, गुण तो गुण है, हमको तो गुण का ग्रहण करना है। शेष जो भाव है, मैंने जो विभाव परिणाम है, वे मुझ से पर है, अन्य है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसे अनुवाद पर आचार्य महाराज की किताब है, अभी कितना देर मैंने
सुनत गड़ बिन पिछानी
हम चिन्ह